والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے دور کر دے جہنم کا عذاب، ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو یقیناً چمٹ کر رہ جانے والی چیز ہے. آپ اگر غراما کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو چنگم ذہن میں لائیے، کھائی بھی چنگم بہت ہی ڈھیلی جب ہو چکی ہو، آپ اس کو ذرا کسی کپڑے کے ساتھ لگائیں، کیا وہ نقشہ کھینچتی ہے. کسی کپڑے پہ لگ جائے، بعض دفعہ کپڑا پھٹ جاتا ہے لیکن وہ وہاں سے نہیں اترتی. تو یہی لفظ ہے کہ جہنم کا عذاب چپکنے والا ہوگا. بالکل پلاسٹک کے کپڑے پہننے ہو کسی نے اور جل جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ کپڑے جسم کے اوپر چپک جاتے، وہ اترتے بھی نہیں ہیں. کبھی آپ نے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کوئی پلاسٹک کا برتن اگر آگ کے پاس آ جائے تو کیا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کے ساتھ اتنا گہرا شغف ہے، اس کے باوجود جہنم سے خود کو بے نیاز نہیں کہتے، کوئی نہیں ہے میرے لیے جہنم، یہ کافروں کے لیے، میں تو نہیں آگ میں جاؤں گی، میں تو اللہ کی بڑی لاڈلی ہوں. ڈرتے ہیں کہ اللہ کہیں ہمیں یہ جہنم نہ لگ جائے. اور لفظ غرامہ، غرامہ سے آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا سورہ کاف میں، غرامہ ٹیکس کو کہتے ہیں، ٹیکس کہہ لیں یا ٹول جو ہوتا ہے، زبردستی کی چھٹی. سورت نور میں کیا پڑھا تھا ہم نے، مقرب بندوں کا کیا حال ہوتا ہے، آیت 37 میں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس ان کے خیال سے جس میں دل اور نگاہیں الٹ دی جائیں گی. اور یہاں دیکھیے، سب کچھ کر کے بھی رو رہے ہیں کہ اللہ آگ میں نہ ڈالنا، کیونکہ انہ سات مستقر و مقام، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے، مستقل ٹھکانے کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے بھی. اب دیکھیں کہ دنیا میں انسان کی عادت کیا ہے کہ وہ تبدیلی پسند کرتا ہے. تفریح کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ تفریح انٹرٹینمنٹ چینج کا نام ہے. پہاڑوں والے جو ہیں وہ میدانوں میں آ کے تفریح کر لیتے ہیں، میدانوں والے پہاڑوں میں جا کے تفریح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ، اچھی سے اچھی جگہ پہ بھی اگر انسان کو مستقل رہنا پڑ جائے نا تو جلدی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. اس کے برعکس جنت اور جہنم کی کیفیت بالکل فرق ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ جنت اتنی پرکشش اور خوبصورت ہے کہ وہاں مستقل رہنے کے باوجود اہل جنت کا دل نہیں بھرے گا، بدلنے نہیں چاہیں گے. سورہ کہف میں بھی آتا ہے، لا یبغون عنہا حولا، سورہ کہف ہے، کہ یہ تو جنت میں وہاں سے منہ ہونا ہی نہیں چاہیں گے کہ اب اس گھر سے دل بھر گیا دوسری طرف چل پڑو. اور جہنم کا حال کیا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی انسان چلا گیا تو اس کو اپنی زندگی جو تھی نا وہ پھولوں کی سیج لگے گی اور وہ وہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہے گا. تو جہنم سے بچنے کا خوف، یہ ایمان کی بات ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں. وکان بین ذالک قواما، اور ان کا معاملہ تو ان کے درمیان ہوتا ہے، بین بین، معتدل، ماڈریٹ، نیوٹرل. اب دیکھیے، کسی معاملے میں اعتدال پر قائم رہنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اوور سپیڈنگ لوگوں کو اچھی لگتی ہے، جتنا الاؤڈ ہوتا ہے سپیڈ کی لیمٹ وہ نہیں پسند کرتے عموماً. بالکل درمیان میں رہنا، حدوں میں رہنا پسند نہیں ہوتا. لوگ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں، خوشیوں میں بھی ایکسٹریم پہ. آپ دیکھیے کہ جو یہ جیسے کیبرے ڈانس ہے یا اچھلا کودی ہے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ایک دم آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے اچھلنا شروع ہو جائے تو خوف آئے گا نا کہ شاید کوئی کیڑا چلا گیا جسم پہ، ایسی ہے نا. یہ غیر مناسب رویے ہیں. شراب کے نشے میں دھت ہو کے ایسے مستی میں لیٹے رہنا، کیا یہ نارمل رویہ ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے، عباد الرحمن ایکسٹریمس نہیں ہوتے. اور میں اس کو کیا کہتی ہوں، جذباتی نہیں ہوتے، ایموشنل نہیں ہوتے. خرچ کرنے آتے ہیں نا تو فرائت من اتخذ الہہ ہواہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں. ایک اتنی سی چیز، اتنی سی چھوٹی سی چیز بعض دفعہ کئی سو کی آتی ہے، اور وہی سو اگر دین کے نام پہ ہوں تو ہم سو بار سوچیں پھر خرچ کریں. لیکن چونکہ یہ برانڈ اچھا ہے، یہ نام اچھا ہے، یہ رنگ اچھا ہے، یہ کپڑا اچھا ہے، یہ دوسرے نے پہنی تھی اچھی لگی میں بھی لے لوں، اٹس اوکے، یہ تو اتنے کا آتا ہی ہے، بلیف نہیں. بعض دفعہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پکی ہوتے ہیں، وہی چیز سستی بھی ملتی، کہتے نہیں وہ تو بھی لک نہیں بنتی نا، جو یہ پہن کے لگوں گی وہ تو نہیں لگوں گی. وہ نہیں پتا کیا لگتے ہیں، کسی کو نہیں پتا، بس اپنے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ مہنگا لیا کہ سستا لیا. وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا قوام. یہ جو یکترو ہے نا اس کو اردو لکھ لیں کنجوس، جو ضروریات پہ بھی نہ خرچ کریں، اپنے آپ کو بالکل ضائع کر دیں، ماڈریٹ. یعنی عباد الرحمن کی سیرت پختہ ہوتی ہے، میچور ہوتی ہے، ان کو اپنے اخراجات کے اندر اعتدال اور توازن قائم رکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. یقین کیجئے بعض دفعہ لوگ کپڑوں پہ جو بے تحاشا خرچ کرتے ہیں نا، میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ خرچ ایمان والا نہیں کر سکتا، ان یوزل خرچ ہے. ایک ہے نارمل، اچھا بھی پہنو اچھا بھی کھاؤ، لیکن خرچ کیا کرتے ہو؟ صرف ایک نام پہ. یعنی ایک عام مت بن چکی ہے کہ 25-30 ہزار روپے سے سستا اب کوئی جوڑا ہی نہیں ہے مارکیٹ میں جو بندہ شادیوں میں یا دعوتوں میں پہن سکے. بھائی تو آپ کو 25-30 کا جوڑا پہن کے کرنا کیا، آپ خود بنا لیں. آپ کو یاد ہے ایک وقت لوگ خود کڑھائیاں سلائیاں کرتے تھے، گھروں میں شادی آتی تھی تو مائیں بیٹیوں کو کسی پہ بیل لگا دینی، کسی پہ کڑھائی کر دینی، کسی پہ کوئی بوٹی لگا دینی، بڑے بہنوں کے کپڑے چھوٹے کر کے چھوٹوں کو پہنا دینے. گزر گیا نا وہ وقت. آج کنواری بچیوں کے وہ کپڑے بنتے ہیں جو میرٹ کے بھی نہیں تھے کبھی بنتے، اور صرف نام ہے، اور صرف آپ کو پتا ہوتا کہ یہ کتنے کا، کسی نہ کام کی چوائس، لیکن آپ کو پتا کہ ہم نے لی ہے. یا کوئی ماڈل کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ اس نے پہنی ہوئی ہے. اب تو یہ کہتے ہیں یہ کرسمک ہے، اچھا یہ فلانے کا، یہ فلاں کا، اچھا یہ وہ سٹائل نمبر. یہ اب تو پہلے کپڑے تھے کپڑے میں، اب ساتھ تصویر بھیجتے ہیں کہ یہ لگو گی تم پہن کے، اور جب پہننے کے باوجود وہ نہیں لگتے تو گلٹ میں چلے جاتے ہیں. کین یو بلیو؟ دیکھیے یہ باتیں میں کوئی فتوی نہیں دے رہی اس وقت کہ 5 ہزار کا جوڑا مہنگا ہے یا 50 ہزار کا مہنگا ہے، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ حلال کی کمائی ہو اور حساب پہ نظر ہو تو کوئی بندہ 10-12 ہزار کا لون کا جوڑا نہیں پہن سکتا، صرف اس نام پہ کہ یہ برانڈ کا جوڑا ہے. بلیو می، کیونکہ خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. اور اس پہ پھر حضرت عثمان غنی کو یاد کر لیں، دا بیسٹ کرائیٹیرین ان مائی ویژن. دو باتیں سنا دیتے ہیں، ایک عثمان غنی کی. ایک بار اللہ کے نبی کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ ضرورت مند ہوں. اتفاق سے آپ کے پاس اس وقت نہیں تھے، آپ نے کہا اچھا ایسا کرو وہاں چلے جاؤ، عثمان کا گھر ہے، ان سے مانگو، مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں دیں گے. وہ شخص آیا. اب اس دور میں گھروں کے باہر دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، پردے تو کیا ہوں، کچھ ہوں نہ ہو، باہر سے آوازیں آ رہی تھی کہ عثمان غنی اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑ رہے تھے کہ جب ایک چراغ سے کام چل سکتا تھا تو نے دو کیوں جلائے. بس واپس آ گیا. کہ جو بندہ اتنا کنجوس ہے کہ دوسرا چراغ جلانے پہ بیوی سے جھگڑا کر رہا ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی وہاں سے تو نہیں ملنے کی امید. کیوں، کہا مانگا تھا تم نے؟ کہا نہیں مانگا تو نہیں تھا. اچھا پھر جاؤ مانگ کے تو دیکھو. پھر واپس آیا، دروازہ نوک کیا، جو بھی پردہ تھا وٹ ایور کہا، اچھا جی عثمان غنی ضرورت مند ہوں، اللہ کے نبی نے بھیجا، اچھا ابھی آتا ہوں. وہ کہنا چاہیے نا کہ پیسے والے کی تو آنکھیں کھل جاتی ہیں نیکی کا موقع دیکھ کے، کہ ایک اور انویسٹمنٹ کا موقع آ گیا. دیکھیے گھر میں پیسے رکھے ہوں اور آپ کو آ جائے کمپنی کی طرف سے کوئی انویسٹمنٹ سے کہ یہاں لگائیں تو 10% نفع ہے، 20% ہے، تو تاجروں کی تو آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں گھر میں رکھے تو اور چوروں کا ڈر ہے، بینکوں میں رکھے کیا دینا ہے، کاروبار میں لگاتے ہیں. تو نیک شخص بھی ایسے ہی اپنے مال کے ساتھ کرتا ہے. فوراً اندر گئے، اشرفیوں کی تھیلی لے کے آ گئے، گولڈ کوائنس. کالا کے بندے یہ کیا، اب نہیں چپ رہ سکے. یہ بتائیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ ایک چراغ کی وجہ سے جھگڑ رہے تھے، تو اب آپ نے مجھے اللہ کے نام پہ جو دیا ہے وہ تو سونے کی شرف ہے. کہا اس لیے میرے بھائی کہ وہ چراغ کا بل مجھے دینا پڑتا، وہ میرے حساب میں پڑتا، یہ میں اپنے رب کو دے رہا ہوں. یہ ہے بھائی نزالی کا قواما، ہماری ڈکشنری سے بالکل اپوزٹ، بالکل اپوزٹ. ہم کہتے ہیں یہ بچوں کے کام آئے گا گولڈ، یہ بھر بچوں کے کام آئے گا، یہ فلاں کے آئے گا. یقین کریں مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ کہ اللہ کی ذات کیسے لوگوں کے دلوں میں نیکیوں کے خیال ڈالتے ہیں، اور صرف قرآن والے ہی ہوتے ہیں. نعرے سن کے، نعتیں سن کے نہیں وہ جذبے آتے جو قرآن سن کے آتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھیوں میں کسی اور ملک میں، اس ملک کی بات نہیں ہے، اس سال انہوں نے ہمیں رمضان میں اپنا گھر اسکول کو ڈونیٹ کرتے ہیں. بات ہو گئی، سب ٹھیک ہے، سمجھ گئے، آگے جیسے بھی ہوتا ہے. قصہ مختصر کے تھوڑے دن پہلے ان سے بات ہی کر رہے، وہ دن جس دن سے وہ گھر ہم نے اسکول کو نیت کی، ابھی ہم سے کوئی لکھت پڑت نہیں ہوئی، ابھی کچھ نہیں، نیت کی ہے نا، کرائے پہ آ رہا ہے، اس کا جتنا کرایہ وہ سارا اسکول کے لیے جمع کر رہے ہیں. اب اسی سے یہ وہ کر کرا کے وہ کہتے ہیں وہ اسکول کا گھر ہے. کوئی ایسے وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے گھر میں رہے. اپنی زندگی میں آپ کہیں گے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے بچے نہیں ہیں. بچوں والے کی کہانیاں سناؤں تو آپ تو کبھی مانیں ہی نہ. صرف قرآن وہ شخصیات پیدا کرتا ہے. اور یاد رکھیں جب ماں باپ کا دل کھلتا ہے تو بچوں کا دل کھلتا ہے. ये कल हमने बात की है ना ऑनलाइन पे, 2-3 दिन हो गए इस कार्रवाई को, जो लोगों की शेयरिंग्स और जो उनकी कंट्रीब्यूशंस और जो उनके मैसेजेस हैं उसको सुन के फिर बंदा जमीन में जाने को दिल करता है। ऐसे लगता है जैसे बंदा ताड़ते नहीं है, ताड़ना समझते हैं, मौके की तलाश में। हमारा हिस्सा जरूर डले, ये नहीं तो वो नहीं तो ये तो, ये तो नहीं। और वो अल्लाह उनको हिदायत दे, जो बच्चियां जो इस क्लास की हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, वो ग्रुप बनाया हुआ हमने उस पर, एक इन्होंने बना दिया उसे मुझे डाल दिया, तो कल तस्वीरें जो उन्होंने भेजी कि जो बिल्डिंग्स देख रही हैं मेरा लिए कुछ 20-20 22-22 मिलियन की, उनको कह जो दिया पैसों की फिक्र ना करना, तो अब वो चीजें देख रहे हैं। मैं हंस रही थी, मैंने उनको बस उर्दू में लेकर कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मैं ऊपर भी हंस रही थी नीचे भी। तो वो जगह ऐसी है कि देखें तो आप, मैं दिखाऊं तो आप मानेंगे वो जमीन की जगह ही नहीं, इतनी वो खूबसूरत। वो कहती नहीं है लेना तो सारा ले लेंगे, पूरा मॉल ही ले लेंगे। तो करने तो मैंने तो नहीं उनको कहा ना देखें, देखें आपको इसी बेवकूफियों में अल्लाह ने कोई अच्छी चीज भी दिखा देनी है। तो असल बात ये कि मोहब्बत आपको किससे है। हजरत उस्मान को गम था अपनी जात के हिसाब का, हमें हिसाब ये कि अपनी जात बड़ी हो जाए। अल्लाह के लिए जो देते हैं क्या उनको दर्द नहीं होता देने का, लेकिन उनको पता है कि ये मेरा इन्वेस्ट हो रहा है, मुझे आगे जाके मिलेगा, जमा हो रहा है। वही हजरत आयशा की बात कि अल्लाह के नबी सारी बकरी चली गई, ये छोटा सा दस्ती का टुकड़ा आपके लिए बचा लिया। कहा नहीं आयशा, सारी बकरी बच गई, ये गोश्त चला गया जो तूने मेरे लिए रख लिया। तो ये तो नहीं है कि दीन वालों के पास और इबादुर्रहमान के पास पैसा नहीं होता, होता है, उनको खर्च बड़ा अच्छा करना आता है। दूसरा जो मैंने कहा था आपको हदीस का वाक्य सुना दूंगी, जिससे मुझे तो बहुत अच्छी गाइडलाइन मिली उससे, और वो मारूफ वाक्य है, बहुत दफा सुना होगा आपने भी, कि एक दफा खुश्क साली थी, बारिशें नहीं होती थी, खेत सबके बंजर पड़े थे। एक शख्स कहीं से गुजर रहा था तो उसने बादलों में से आवाज सुनी, इसकी खरसा फलाने, फलां के खेत पे बरसो। उस शख्स के दिल में तजस्सुस आया कि ये आवाज कहाँ से आई है, अच्छा चल पड़ा। अच्छा वो बदली जो थी ना वहां से चलती भी गई, फिर उसकी डिटेल्स है, लेकिन किस्सा मुझसे के खेत पर उसका पानी गिर गया। जब उसके ऊपर पानी गिर गया तो उसको चारों तरफ खेत खुश्क है, सिर्फ एक शख्स के खेत पे बारिश हो रही है। तो कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बैठता हूँ देखता हूँ ये किसका है। थोड़ी देर बाद देखा तो मालिक आ गया, कहा तुम्हारा नाम क्या है। बिल्कुल वही नाम था जो उसने बादलों में सुना था। कहा ये तेरा नाम है, कहता मैंने अभी तेरा नाम तो बादलों में सुना है, तू बता तेरी क्या नेकी है कि सबके खेत खुश्क है और तेरा खेत जो है वो सराब है। का कोई और तो बात नहीं पता, बस इतना पता है कि जब इस खेत की फसल आती है ना तो उसको पहले दिन से 3 हिस्सों में कर देता हूँ, एक हिस्सा अपनी जरूरियात के लिए, बीवी बच्चे घर रिश्तेदार जिनकी मेरे ऊपर लाइबिलिटीज उन पे लगाता हूँ, दूसरा हिस्सा जो है वो मैं अगले साल के फसल के लिए समेट लेता हूँ, उससे फिर दाना खरीदना कुछ करना, और तीसरा हिस्सा मैं फी सबीलिल्लाह बांट देता हूँ। कहता बस तेरी ये बांट अल्लाह को प्यारी लग गई। तो ये है लम युसरिफू वलम यक्तरू, जरा चंद बातें लिखिए। देखिए खास तौर पे हम खवातीन जो है ना पैसे खर्च करने के मामले में बहुत ज्यादा केयरलेस होती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना इजी कम इजी को, जब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती तो हम फिर खर्च करने में भी मेहनत नहीं करते। बाज़ दफ़ा मर्दों की इतनी मेहनत की कमाई, धूपों में खड़े खड़े और मेहनत किए हुए मर्द होते हैं, बीवियां सिर्फ एक अरमान की नज़र में कई लाख खर्च कर देती हैं, वहीं से फोन करती हैं इतने लाख का चेक काटने लगी हूँ। अब वो बेचारा क्या करे, वो पहले ही किसी और के साथ बैठा हुआ है कुलीग्स में, क्या कह के बेगम को ये एक डायमंड का सेट ही नहीं दिला रहा। कैन यू बिलीव, 25 लाख की अंगूठी कोई औरत पहन सकती है अपनी उंगली में? 25 लाख रुपए की अंगूठी कोई पहन सकती है औरत, चाहे आप उसको डायमंड के या जरकोन के? उंगली तो लोग काटेंगे, उनको ये तो नहीं पता कि इस उंगली के काटने की दियत कितनी है। वो 25 लाख का वो आपसे डायमंड लेने के लिए उंगलियां काट के आपके नौकर ही ले जाएंगे। और औरतें आम बातें करती हैं अपनी दावतों पार्टियों में, ये वहां से लिया है, ये वहां से लिया है, ये इस कंपनी का, ये उसका, अच्छा ये उधर से लिया है। किसी को चीज लोग पहले देते थे ना तो चीज देते थे, अब पहले बोलते हैं ये मैंने आपके लिए, इसके लिए। मुझे भी कई दफा लोग कहते हैं ऐसे, कोई बहुत अपना प्यारा कोई दोस्त कोई चीज देते हैं जब भी कोई, जब वो ये साथ ही कहते हैं ना ये मैंने वहां से आपके लिए लिया है, तो मैं कहती हूँ पहले ये बताएं कि आपने मेरे लिए वहां से क्यों ली है, इतनी महंगी चीज तो मैंने कभी सोची भी नहीं लेने की, आपने मेरे लिए क्यों ली है, मैं नहीं लूंगी क्यों, कि इसमें तो 4 चीजें आ सकती थी। तो देखिए इस पे कोई फतवा नहीं है, ये फतवों की बातें नहीं होती, ये सिर्फ और तकवे की बातें हैं। जिस बंदे को अपनी औकात पता है ना कि मैं इबादुर्रहमान हूं, मैं बंदी हूं, गुलाम हूं, मैं मासी हूं, मेरी औकात है कि मैं 25 हजार का जोड़ा पहन के निकलूं जिसमें गंदगी भरी हुई, जिस्म से हवा निकले तो गंदगी आने लग जाए, आंखों में गिद्दे पड़ जाती हैं सुबह उठती हूँ, ब्रश ना करूँ तो मुंह से स्मेल आती है, क्या मुझे 25-30 हज़ार का जोड़ा पहनने का हक है? अल्लाह की नजरों में मैं पता नहीं क्या हूँ, मुझे सारी दुनिया भी मिस क्वीन कह दे, मिस वर्ल्ड भी कह दे, तो मुझे क्या मिला? ये सिर्फ अपना नफ्स होता है। आ रहा ऐ तमन इतखज़ इलाहहु हवाहु, ख्वाहिशात ये नहीं जीने देती। और यकीन करें कोई शर्त नहीं है कि आप बहुत महंगी चीज पहन कर भी हसीन लगे, सच है कि नहीं? हसीन लगने का तो कोई इससे ताल्लुक नहीं है। आप लॉन का जोड़ा बिल्कुल सस्ता सा अच्छे रंगों का खूबसूरत पहने, कई दफा आपको बहुत उठता है। और बाजो बहुत कीमती जोड़ा भी कोई होता है तो पहन के आपको नहीं सजता, जोड़ा तो अच्छा ही होता है। एक होता है जोड़ा अच्छा है कि आपको अच्छा लग रहा है, कुछ लोग हैं वो कहते हैं आप इस जोड़े में बड़े अच्छे लग रहे हैं, और कोई कहता है ये जोड़ा आपको बहुत सज रहा है, फर्क है ना? तो हमेशा अपनी औकात पे रहे, और जिस उम्मत के सर पे इतने काम हो। अल्लाह के नबी की एक हदीस सुना के आगे चलूंगी। फरमाए मा आला अली ऐन अलिफ लाम, तीन चार लफ्जों की हदीस इसलिए अरबी में लिख ले, मा मीम अलिफ आला ऐन अलिफ लाम मन निक्तसदा, मन लिख लेना मीम नून, और उसके बाद इक्तसदा अलिफ काफ ता स्वाद और दाल। ये मैंने जरा चबा चबा के इसलिए बोले कि आपको समझने में आसानी हो। मा आल मन इक्तसदा, कभी भी तंग दस्त नहीं होगा वो शख्स जिसने दरमियानी राह रखी। और मैं इस बात की गवाही आपको दसियों औरतों की दे सकती हूँ, सारी जिंदगी के उनके मर्द बिल्कुल सफेद पोश हैं, ना उनके कोई बहुत बड़ी मिलें हैं, ना फैक्ट्री हैं, सिंपल सी कोई जॉब करते हैं या कुछ, लेकिन आज तक जिंदगी में उन्होंने कभी किसी से मांगा नहीं। और जो उनके घर जाए तो हो सकता है एक हफ्ते का खाना खिला दें, और यही तसव्वुर दें हमारे घर में अभी और भी बहुत है, कभी नहीं रोते धोते देखा। लेकिन कुछ ऐसे हैं इधर पैसा आया उधर चला गया, वो रोते ही दिखते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें इक्तसाद दे दे। चलिए अब देखिए कितनी बातें आ गई जिसका किरदार के साथ ताल्लुक था इबादुर रहमान के बाद। अब कहा वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखर, और वो लोग जो नहीं पुकारते अल्लाह के साथ किसी और को माबूद। वला यक्तुलूना नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक्की वला यज़नून, और ना ही वो कत्ल करते हैं किसी जान को जिसको अल्लाह ने मुहतरम ठहराया मगर हक के साथ, और ना ही वो कभी जिना करते हैं। और उसके बाद देखिए इसी आयत को पूरा करने के लिए फिर हम बात करेंगे, वमन यफअल ज़ालिका यल्का अथामा, और जो भी ये काम करेगा वो इसकी सजा को हासिल करके रहेगा। क्या होगी सजा? आयत 69, युदाफ लहुल अजाब, दुगना कर दिया जाएगा उसके लिए अजाब। अदाफ का लफ्ज कहाँ पढ़ा था आपने? पीछे तीसरे पारे के शुरू में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में, अदाफा मुदाफा, सूद के बारे में सूरह इमरान में पढ़ा, दुगने का दुगना सूद, वही लफ्ज है, दुगना किया जाएगा उसका अजाब, यानी मल्टीपल मुराद है इधर, प्लस नहीं मल्टीप्लाई। यौमल क़ियामती, क़ियामत के दिन, व यखलुद फीही मुहाना, और वो उसमें हमेशा रहेगा जलील होकर। अब ये देखिए इस एक आयत की जरा तरतीब पे गौर फरमाइएगा, पीछे बात होगी अखलाक की बातें, अब एकदम ऐसे लग रहा है कि शिर्क की बात जहां एकदम क्यों आ गई, लेकिन इस आयत को पिछली आयत के साथ ना समझें, इस आयत में आने वाली दूसरी चीजों को समझिए। इस एक आयत में सबसे पहले क्या है? अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाना, ठीक है, शिर्क। दूसरा इसमें जुर्म क्या है? कत्ले नफ्स, हां हर्रम बिल हक, हक के साथ कत्ल के वो कानूनी सूरतें जिसमें कत्ल किया जा सकता है, हुकूमत करेगी यानी कत्ल के बदले में कत्ल, तीन सूरतें होती हैं हक के साथ कत्ल की, कत्ल के बदले कत्ल, मुर्तद की सजा कत्ल यानी जो इस्लाम छोड़ दे, और तीसरा हरबी काफिर यानी जो जंग में आ गया तो उसको तो मारना है, और इसी के साथ चौथा मिला लें तो शादीशुदा जानी, ठीक है। इसके बाद अगला गुना देखिए, वला यज़नून, और वो जिना नहीं करते। तीन गुना है इसमें, कबीरा गुना, शिर्क, कत्ल नाहक और जिना। कुरान पाक में दो जगह ये आता है कि बेशक अल्लाह मुशरिक को माफ नहीं करेगा। कत्ल के बारे में सूरत निसा में बातें पढ़ ली, कत्ल खता पढ़ लिया, कत्ल अमद पढ़ लिया, इतना भयानक जुर्म है कि इससे आप देखिए किसी सोसाइटी के अंदर से सुकून चला जाता है, और जिना किसी मुआशरे की गंदगी का ढेर है। सूरत निसा 31 में हमने पढ़ा था, इन तजतनिबु कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, अगर तुम लोग बचते हो कबीरा गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया गया, तो हम तुम्हारे छोटे बड़े सब गुना बख्श देंगे और तुमको इज्जत वाली जगह में दाखिल करेंगे। तो तीन कबीरा गुनाहों का जिक्र करके बता दिया, इबादुर रहमान कबायर के तो करीब भी नहीं जाते। अगर करेंगे मैं यफल जालिक यलका असामा। असामा क्या है? आप देखिए कि गुना की एक कैफियत, यानी जो भी ये काम करेगा वो इसकी सजा को हासिल करके रहेगा, और उसकी सजा थोड़ी नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी, उसमें पकड़ा जाएगा और उसके लिए उसको कोई बचा भी नहीं सकेगा। अल्लाह ताला ने उसके लिए रखा है ये सजा। असाम क्या है? सजाए गुना। बस कहते हैं असाम जहन्नुम की एक वादी का नाम है जो सख्त और शदीद अजाबों से पुर है। ऐसे लोग वहां नहीं बच सकते। अल्लाह ताला ने जो जहन्नम रखी हुई है उसको ये पाके रहेंगे। हाँ, इतने बड़े बड़े गुनाह करने के बाद बचेगा कौन इस अजाब से, इस हिसाब से? इल्ला मन ताब व आमना व अमिला सालिहन, सिवाय इसके जिसने तौबा की और ईमान लाया और इसने नेक अमल किए। कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब भी तौबा के पानी से साफ हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि दीने इस्लाम की सबसे मजबूत चीज कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, तो वो तौबा है। आप सोचे एक डिटर्जेंट है जो हर धब्बे को दूर कर देता है, और वो तौबा है। नदामत के आंसू, अन्नदमत तौबा, पिछली जिंदगी पे शर्मिंदगी। ऐसा शख्स चाहे मुसलमान था लेकिन कबीरा गुनाह हुए, और कबीरा गुनाहों की वजह से बेशक लोगों के नजर में वो मुसलमान था लेकिन हकीकी ईमान उसके दिल से चला गया। अब तौबा के बाद आमन व आमिल सालेहन तजदीद ईमान, अब दोबारा मुसलमान हो, फिर कलमा पढ़ो। शर्त एक है कि मौत का गरगरा ना शुरू हो जाए, मालम योगार गिर, जब तक के इसको मौत की हिचकी ना लग गई हो। क्या होगा? फौलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। इसके दो मानी है, एक तो ये कि नामाए माल में जो इसके नाम पे बुराइयां दर्ज थी ना वो साफ कर दी जाएंगी और फिर इसकी जगह नेकियों का अंदराज होगा। दूसरा मतलब यह कि तौबा करने से इंसान के दामन इखलाक के धब्बे दूर जाते हैं और वो दुनिया में इन बुराइयों को छोड़ देता है। तौबा करने के बाद तो दिल भी नहीं करता गुनाह करने को, जैसे शावर ले लें तो उसके बाद फिर गंदे कामों में नहीं पड़ने को दिल करता ना, कि मसीना आ जाएगा, बू आएगी और दाग पड़ेंगे। इसी तरह एक दफा सच्ची तौबा कर लें फिर गुनाह में दिल नहीं लगेगा। और ये क्यों होगा? वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, वो है बख्शने वाला और मेहरबान। यहां से आप देखिए अल्लाह तआला की मोहब्बत, अल्लाह की जात कैसे हमारे से बात करते हैं। आप देखिए ये सारी आयतें जब इकट्ठा पढ़ते हैं ना, जैसे लगता है कि अल्लाह तआला कभी किसी से मायूस नहीं है। और ला तक न तो मे रहमत अल्लाह, गुनाह को करने के बाद माफी मांगने से पीछे ना हो जाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक औरत आती है और आके उनसे बड़ी डिटेल से अपने गुनाह का जिक्र करती है, हत्ता कि ये तक कहती है कि मेरे उस गुनाह के नतीजे में बच्चा भी पैदा होने वाला हो गया और मैंने कत्ल भी कर दिया किसी को, तो क्या मेरी तौबा है? तो उन्होंने कहा नहीं, तेरी तो कोई तौबा नहीं है, एक गुना बहुत बड़ा, तूने तो इतने सारे किए। तो कहते हैं कि मेरी ये बात सुन के उस औरत ने अपने आप को मलामत किया, क्या खूबसूरत जिस्म, तुफ है तुझ पे, तू आग के लिए पैदा किया गया, रोती हुई वहां से चली गई। कहते हैं कि मैं जब नबी सल्लम से उसके बाद मिला तो मैंने जिक्र किया कि ऐसे वो एक औरत आई थी तो उसने अपने ये गुनाह बताए, तो मैंने उसके इस गुनाहों के ऊपर इसको कहा कि तेरी तो तौबा ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा तूने उसको क्यों मायूस किया जब उसको ढूंढ के ला? कहते हैं फिर मैं गया उस औरत को ढूंढा, फिर उसको कहा कि औरत मायूस ना हो, तौबा कर, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। इतना प्यारा हमारा दीन है। ये है जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, किसी का बड़े से बड़ा गुना भी हो ना उसको नशर ना करें, शोहरत ना दें, मायूस ना हो, सिर्फ इसलाह करें, उन तक मैसेज कन्वे करें। आप वो काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो अगले को भी फायदा होगा। तो गोया के फिर आप कह सकते हैं कि इबादुर रहमान गुनाहों पर ढिठाई से जमते नहीं हैं बल्कि सच्चे दिल से तौबा भी करते हैं। और तौबा करने के बाद बंदा ऐसे हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया नहीं। फिर उसको पता चलता है कि मैं हकीकत में अल्लाह का बंदा हूँ। और आप आजमा के देखें, जो लोग गिल्ट के साथ वापस आते हैं ना, फिर वो बहुत नेक होते हैं। बल्कि किसी का एक जुमला कि बाज़ दफ़ा कुछ गुनाह अल्लाह करवाते हैं किसी से इसलिए कि फिर उसका गिल्ट इतना दिल पर पड़े, बोझ पड़े कि उसकी वजह से वो नेकी की तरफ आ जाए। जो थोड़े थोड़े नेक गुनाहगार होते हैं ना, वो बाद में थोड़े थोड़े नेक हो जाते हैं। जो ज़्यादा गुनाहगार होते हैं ना, देखने में आए कि वो बाद में बहुत नेक हो जाते हैं। अल्लाह ताला फितनों से बचाए और हमें हकीकत में अपना बंदा बनाए। फिर इसके बाद आयतें पूरी करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स एंड पे हम बाद में भी करेंगे। ये जो युदाफ लहुल अजाब था, इसमें अजाब कब्र की तरफ भी इशारा है। चलिए तौबा हो गई, अब अगले काम पे चलते हैं। 72 आयत पे, वल्लज़ीन ला यशहदून ज़ूर, और वो लोग जो झूठ पर मौजूद नहीं रहते। लफ्ज़ ज़ूर को झूठ क्यों मैंने पढ़ा? देखिए, एक होता है थोड़ा सा झूठ और एक होता है बहुत बड़ा झूठ। कौले ज़ूर क्या है? झूठ एक वो है जो जुबान से आपने बोल दिया, जैसे लाए के मानों में लाइंग, राइट। लेकिन ज़ूर अमल से भी हो सकता है, कॉल से भी हो सकता है, यानी झूठी कहानियाँ, झूठी फिल्में, झूठे डायलॉग, झूठी शोहरत, झूठा स्टेटस और इस तरह की बातें कि जिसके अंदर इंसान अपने आप को लेके चलता है। तो ज़रूरत ऐसी कि इंसान अपनी ज़िंदगी में से झूठ को देखे कि ये झूठ पे नहीं होता। आप कह सकते हैं कि ज़ूर का मानी बातिल है, झूठी चीज़ें, बातिल चीज़ें, झूठी गवाही से लेकर कुफर और शिर्क और हर तरह की गलत चीज़ें, लहवो लाभ, गाना, बेहुदा जाहिलाना रस्में, फिर सब इसमें आते हैं। यानी इबादुर्रहमान का मिजाज ही ऐसा नहीं होता कि वो गंदी चीज़ों पर रहे, फिक्शन में उनको मज़ा नहीं आता। आप ज़ूर के नीचे फिक्शन भी लिख सकते हैं। और झूठ पर गवाह होने से मुराद है कि ऐसी गंदी चीज़ों को देखने के लिए ये बैठे नहीं रहते। गवाही देने का मौका है तो झूठी गवाही नहीं देते, सब कुछ इसमें आ जाएगा। वही सा मर्रू बिल्लख भी मर्रू की रामा, और जब वो किसी लख काम पर से गुजरते हैं तो बावकार अंदाज से गुजर जाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत पोस्चर है। बैठना तो दूर की बात, इंजॉय करना तो दूर की बात, वो वहां से इज्जत के साथ गुजर जाते हैं। इस एक जुमले पर जरा गौर कीजिए, क्या दर पर्दा इसमें एक लफ्ज नहीं निकल रहा कि लगवियात को देखने के लिए बैठना ये बेइज्जती की बात है। अब लगवियात पहले तो थी घर में एक छोटी सी स्क्रीन चला के बैठ के, उसके ऊपर भी लोगों ने कपड़े डाले होते थे, कोई नेक आता था तो फटाफट टीवी को छुपा देते थे। आज जरा इमेजिन तो कीजिए वो कौन सी महफिलें जहां लग होता है। महफिल मौसीकी कह लें, आप उसको कॉन्सर्ट्स कह लें, किसी की बात नहीं भूलती, अच्छे दीनदार हैं। मुझे किसी ने सुनाया कि उन्होंने कहा कि आपके घर में शादी है तो आप क्यों सेग्रीगेशन नहीं करें, आपके तो सब औरतें भी पर्दा करती हैं, तो आप क्यों शादी के मौके पे? कहती नहीं, हम अपनी दोस्तों के हाथों मजबूर हैं, वो असल में हमारी फ्रेंड्स हैं ना, तो उनके मियाँ भी आते हैं तो वो किसी को वहाँ जानते नहीं हैं, तो मिक्स गैदरिंग होगी तो चले अपनी बेगम से तो बातें कर लेंगे ना, तो घर बैठ के बातें कर लें। कितना शैतान अकलमंद है कि चूंकि मर्द मर्दों में जाएगा, किसी और को नहीं जानता, तो वो बेचारा आइसोलेटेड फील करेगा, अकेला होगा, तो इसको सारी औरतों के बीच में बिठा दो, इधर बड़ा खुश रहेगा। सोचिए जरा, इतना अकलमंद है शैतान और हम कितने बेवकूफ हैं। और एक दीनदार की बात किसी ने मुझे कही, आम लोगों की नहीं बात कही, ये दीनदारों की बात हो, कहते चलते ही नहीं सेग्रीगेशन, ये प्रेस्टिजियस मैटर ही नहीं है भाई, हॉल है इसमें बीच में अगर एक दीवार लग जाएगी तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? कहते नहीं, लुक नहीं आती भाई, दुल्हन का स्टेज आपने बीच में लगा दिया है, सब देखेंगे मर्द, क्या करें फिर, वो वीडियो नहीं बनती, मूवी नहीं अच्छी बनती। अल्लाह कहते गुजरना भी पड़ जाए तो इज्जत से गुजर जाओ, कानों में उंगलियां ठोस के, कि ये बातें भी हमारे कानों में ना आए, दामन बचाओ। पीछे क्या पढ़ा है आपने? हालु सलामन, खुदा हाफिज, हम जा रहे हैं। बड़े तपाक से आप गए कहीं, वहां लफ था, कह के जाइए अस्सलाम वालेकुम, हम जा रहे हैं। ला नब्तगिल जाहिली, ना हम जाहिलों के मुंह नहीं लगना चाहते। ये बेचारे जाहिल है, ख्वाहिश परस्त हमेशा जाहिल होता है। इतने धब्बे दिख रहे हैं इस सूरत को पढ़ने के अंदर, ऐसे लग रहा है शीशा भी ना कोई देखे, और यही मुश्किल है। जाहे तुम भी ही जिहादन कबीरा, फौगी शीशे पढ़ने पढ़ाने बहुत आसान है। आप कुरान का वो एंगल पढ़ा दें जिसमें आप फिर भी खूबसूरत है गुनाह के बावजूद, कई मजबूरियों के नाम पे, कई खानदान के नाम पे, सब कहेंगे बड़ा अच्छा कुरान पढ़ाते हैं, सब चीज़ें जायज़ हैं इनके घर में, इनके अपनी शादियों में भी यही होता है। ये कुरान बड़ा मुश्किल है जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, जिहाद वाला कुरान, या जिसके बाद शख्सियत बदल जाए। والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صمیما و عمیانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ اب یہ ذرا انداز پڑھیے تو میں تو اس کو پڑھ کے کہتی ہوں اللہ اس بات سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ کئی مختلف اس کے معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کا رویہ اندھوں اور بہروں جیسا نہیں ہوتا بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ کہ قریش مکہ کی طرح اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیتوں کی مخالفت نہیں کرتے۔ تیسرا معنی کیا ہوگا؟ آیتیں سمجھ ہی نہیں آتی اور وہاں سے گزر جاتے ہیں جیسے اندھے کے آگے کوئی چیز رکھی یا بہرے کو کوئی بات سنائی، یعنی ان کو قرآن کی آیتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اس میں کون سی چیز میں آتے ہیں؟ تیسری پہ آتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، تلاوت چل رہی ہوتی رونے والی، ہم پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، شادیوں میں بھی دیکھ لیں کہیں بھی دیکھ لیں، سمجھ نہیں آتی۔ سورہ محمد میں اللہ نے اسی رویے کا ذکر کیا تھا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا پھر ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں، تالے پڑ گئے، یعنی عباد الرحمان کے مقام سے گری ہوئی بات ہے کہ وہ قرآن کو اندھے اور بہرے ہو کر مانیں یا پڑھیں۔ تو جس کی زندگی میں 5-6 سال کی عمر سے جاہد ہوں بھی جہادن کبیرہ شروع ہو گیا قرآن کے ساتھ، کیا وہ اندھا بہرا رہے گا؟ اس کو قرآن پورا سمجھ آئے گا؟ آئیڈیل بات، پہلے بھی کہی تھی آج پھر کہتی ہوں اور آپ کو کہتی رہوں گی، اب اگلے 10-12 سپارے جو رہ گئے آپ کے اس میں، آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ 15 سال کی عمر تک ہم قرآن کو سینے میں اتار چکے ہوتے ہیں، بچے کی تربیت میں 5-6 سال سے شروع کر دیں قرآن کی تعلیم، اس کو سمجھانا کہ 14-15 سال تک کا بچہ شاید میٹرک کرتا ہے، بس میٹرک کے ساتھ وہ پورا قرآن سینے میں ڈال دے تاکہ اندھا بہرا ہو کے نہ گزرے ان آیتوں سے۔ صرف ترجمہ، بعض لوگ قرآن کا ترجمہ لکھتے ہیں، ایسی خوف آتا ہے باتوں کو کسی کی بات کہ وہ قرآن کا ترجمہ بھی بہت شوق سے لکھا اور کرا اور پھر بھی رویے میں چینج نہیں، تو کسی نے کہا کہ آپ نے پورا قرآن پڑھا یا لکھا ہے؟ آپ کا حال ہو لیا تو یہ نہیں بتاتا، تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ اچھا اتنی بڑی میرے سے غصہ ہے۔ قرآن کوئی چھوٹی چیز ہے، ابھی بھی آپ اپنے آپ کو چٹکی کاٹیں، چونکہ آپ روز ماشاء اللہ آ رہے ہیں ہفتے میں 4-5 دن، تو آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ویری نارمل، کلاس کا دن ہے، مالک کا کلام، مالک کائنات، زمین و آسمان کا رب۔ اور یاد رکھیے جب قرآن سے آپ اندھے بہرے نہیں ہوتے، اب آپ کو سمجھ آنے لگ گیا، تو پھر اس کے بعد صرف ایک فکر لگ جاتی ہے اور وہ ہے اپنے گھر والے۔